તારીખ 29/12/1995 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન પાના નંબર 13 અને 14 સળંગ પ્રવચન નંબર 189
મારા પ્રદેશમાંથી ઉઠે છે આ અવલોકન કરવાનો વિષય છે. જ્ઞાન દર્શનનો જ્ઞાન દર્શન કા પ્રકાશ મેરે પ્રદેશ મેં સે હી ઉઠતા હૈ. જો કહેતે હૈ એસા હોતા હૈ કે નહીં હોતા હૈ હમ દેખ સકતે હૈ તલાશ કરકે અવલોકન કરકે ઉસ બાત કો સમજના ચાહીએ. સમજને કા તરીકા દો પ્રકાર કા હૈ. એક વિચાર કરકે સમજા જાતા હૈ और फिर इससे आगे एक कदम और है जो अवलोकन करके या अनुभव को पकड़ करके अनुभव को ग्रहण करके अपने अनुभव पर उपयोग को ले जा करके हम समझ सकते हैं. प्राय सभी सामान्यतः विचार से समझते हैं और वो विचार से समझ विचार वाली जो समझ है उस समझ होने पर भी पर्याप्त रूप में नहीं है. वो समझ पर्याप्त नहीं है. क्यों? क्योंकि ये अनुभव का विषय है. वो मात्र विचार से पूर्ण रूपेण पर्याप्त रूप से समझा नहीं जाता. तो देखिए कि अपना ज्ञान दर्शन का परिणाम है, उपयोग है, व्यापार है, वो अपने क्षेत्र में से उठता है कि नहीं उठता है. अगर हम हमारे क्षेत्र में जो बात सुनी वो देखने को अवलोकन करने को जाते हैं तो हमारा दूसरों पदार्थों से जो संपर्क है वो टूट जाता है. टूटता है कि नहीं टूटता है? वैसे अन्य पदार्थों से ज्ञान का संबंध तोड़ना आसान नहीं है. क्यों? कि एक तो ज्ञान अंतर्मुख प्रवृत्ति कर नहीं रहा है, दूसरा स्वपर प्रकाशकपणा होने से अन्य पदार्थ ज्ञान में अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित हो ही रहा है. इसलिए अनादि से हमारा ज्ञान का संपर्क अन्य ज्ञेयों के साथ चालू ही चालू रह जाता है और वो चालू रहता है. उसमें हमारा ज्ञान का बहिर्मुखपना भी चालू रहता है और वो बहिर्मुखपना के कारण से चारित्र गुण में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है. तो ज्ञान का बहिर्मुखपना होना और साथ साथ राग की उत्पत्ति होनी ये अनिवार्य है. और राग की उत्पत्ति होगी तो दुख की उत्पत्ति भी होगी ही होगी. जो हमें पसंद नहीं है, दुख हमें पसंद नहीं है. जब हमें दुख पसंद नहीं है तो हमारा प्रयोजन सुख का है, इसलिए हमें सही परिणमन का प्रकार समझ करके परिणमन करना चाहिए. वो कहते हैं कि पहले तो परद्रव्य का जो संपर्क है वो तोड़ो. कैसे टूटेगा? कि अपना परिणमन अपने प्रदेश में से उठता है, उनको देखो तो उधर देखते हैं, मुड़ करके उधर देखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ये संपर्क छूट जाएगा। अब आगे कहते हैं कि जानपना मेरे में है, इसलिए ऐसा विषय को मात्र विचार की भूमिका में, विचार की कोटि में, विचार की कक्षा में नहीं रख करके, ऐसी बात प्रयोग करके, अवलोकन करके, अनुभव करके समझनी चाहिए, तब सही समझ आएगी। पर इस समझ का फल जो दुख का अभाव और सुख का सद्भाव है वो प्राप्त होगा। जानपना मेरे में है ऐसी प्रतीति करते आनंद हो, यह निर्विकल्प सुख है। ऐसा जानपना मेरे में हो, मेरे में हो रहा है, होता है, कि प्रतीति के साथ करते आनंद की उत्पत्ति होती है अनिवार्य रूप से। जैसे ज्ञान का बहिर्मुख पना होने से राग की उत्पत्ति में दुख का उत्पन्न होना अनिवार्य है, ऐसे जानपना मेरे में है, मेरा ज्ञान स्वभाव मेरे में है, ऐसा निर्विकल्प स्वभाव को जानते ही निर्विकल्प होना और निर्विकल्पता के साथ सुख का होना वो भी अनिवार्य है। ऐसे वर्षा, इससे ये उल्टा उल्टा सुलटा है। उल्टा में दुख की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से होती है, सुलटा में सुख की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से होती ही है। प्रयोग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब बात हम सीख करके जन्म लिया है, ऐसी तो बात है नहीं। हमने जन्म लिया उस वक्त सब बात हमने सीख ली थी क्या? तो बहुत सी नई बातें हम सीखते हैं संसार में भी, इसलिए ऐसा नहीं विचार करना है कि ये बात तो हमने कभी सीखी नहीं है, हमको आती नहीं है, क्या करें। बहुत सी बातें नहीं आती थी वो सीखी। क्यों सीखी? अपने सुख के लिए सीखी, सुखी होने के लिए सीखी, फिर भी हम सुखी हुए नहीं। अब कहते हैं कि सही सुख होने के लिए उसको सीखो, अवश्य सीख सकोगे और सुखी भी होगे। ज्ञान उपयोग आवरण में गुप्त है, ज्ञान में आवरण नहीं है। जैसे सूर्य बादल घटा में छिपा हुआ है, लेकिन सूर्य में बादल की घटा नहीं है। सूर्य तो जैसा है वैसा बादल के पीछे वैसा का वैसा है। लोग चलाते हैं प्लेन चलाते हैं, जो मानसून में बहुत घने बादल होते हैं तो उसका लेवल ऊपर रखते हैं, नीचे बादल और ऊपर प्लेन चलता है, तो वहां धूप मिलती है। नीचे तो उतना घनिष्ठ अंधेरा जैसा हो गया वो, लेकिन ऊपर तो बराबर धूप मिलती है। क्यों? कि बादल तो सूर्य में नहीं थे, सूर्य के आड़े बादल थे, लेकिन सूर्य में बादल नहीं थे। वैसे ज्ञान उपयोग आवरण में गुप्त है, आवरण के पीछे ज्ञान उपयोग गुप्त हो गया, लेकिन ज्ञान में आवरण तो नहीं है। देखो कैसे कैसे बात करते हैं। इसलिए कोई घबराने की या अकुलाहट करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ज्ञान तो निरावरण ही है, आवरण के पीछे मेरा ज्ञान वो मेरा स्वरूप तो निरावरण है ही, स्वरूप में आवरण कभी घुसा नहीं है। हाँ, आवरण को हटाने का जरूरत भी है, पर वो कब हटता है कि आवरण के पीछे मैं निरावरण हूं ऐसा भान होने से हटता है। भान थे स्वभाव परिणामी छे, आया ना 710 में, भान थे भान होने के बाद स्वभाव परिणामी है। तो उतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं है, भान करने की बात है। ठीक है, प्रयोग से भान करना है। ज्ञान ज्ञान के भी दोष हैं, श्रद्धा के भी दोष है, चारित्र के भी दोष है, लेकिन दोष के प्रकार अलग अलग हैं। ज्ञान पर में अपनापन करता है वो किसका दोष है? ज्ञान पर में अपना रूप जानता है कि ये मेरा शरीर, ऐसा जाना, ऐसा प्रतीत भी किया और जाने बिना तो प्रतीत होती नहीं, तो उल्टा जाना तो प्रतीत भी उल्टी हुई, सुनता जानेगा तो प्रतीत भी सुनती होगी। तो उल्टा जानना वो ज्ञान का दोष है, और परसन्मुख होकर के जानना वो भी ज्ञान का दोष है, और अपने स्वरूप में से निकल करके जानना वो भी ज्ञान का दोष है। इसलिए ज्ञान के दोष तीन प्रकार के हैं। फिर भी ज्ञान के दोष में कसाई नहीं है क्या? इसलिए कहते हैं, इसलिए वो बात चलती कि उसमें कसाई नहीं है। चारित्र के दोष में कसाई होता है, ज्ञान के दोष में कसाई नहीं होता है, उतना फर्क है। क्योंकि वो दोष अलग प्रकार का है, वो दोष अलग प्रकार का है। वो कसाई का कारण है, खुद कसाई नहीं है। ज्ञान का दोष खुद कसाई नहीं है, लेकिन चारित्र गुण में कसाई होने का ये कारण है, और कसाई बंद का कारण है। इसलिए ज्ञान सीधा बंद का कारण नहीं है, लेकिन बंद के कारण का कारण है। अज्ञान है वो बंद के कारण का कारण है। अज्ञान सीधा बंद का कारण नहीं है, लेकिन बंद के कारण का कारण है, इतना तो अवश्य है। ज्ञान में आवरण नहीं, कैसे?
नहीं,
उस अपेक्षा से भी ज्ञान बंद का कारण नहीं है ऐसा, उस इसकी अपेक्षा लेकर के भी कह सकते हैं कि ज्ञान बंद का कारण नहीं, ये भी होता है। दोनों बात आती है, वो बात भी आती है कि जो बंद का कारण नहीं है, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन है, इसलिए भी कहते हैं कि ज्ञान बंद का कारण नहीं है, वो भी बात होती है। ज्ञान में आवरण नहीं है, कैसे? ज्ञान में आवरण नहीं है। कैसे? कि जितने अंश से आवरण गया उतना ज्ञान हुआ, जितने अंश से आवरण गया उतना ज्ञान हुआ। अतः ज्ञान आवरण से न्यारा है, तो वो ज्ञान आवरण से न्यारा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, भिन्न था तब तो भिन्न हुआ, भिन्न था ऐसा मालूम पड़ा तो भिन्न हुआ, भिन्न था फिर भी मालूम नहीं था तो भिन्न नहीं हुआ। अभिन्न अभिन्नपना का भाव करता है। हाँ, भ्रम हुआ, मैं भिन्न था वो बात समझने नहीं थी, तो अभिन्नता का भ्रम था, भिन्न होते हुए भी अभिन्नता का भ्रम था। अतो ज्ञान आवरण से न्यारा है, यह ज्ञान अपना स्वभाव है। जो ज्ञान आवरण से न्यारा है वह अपना स्वभाव है, वह अपना स्वरूप है। तो अपना स्वरूप प्रकट हुआ क्या नहीं हुआ? कि प्रकट है। और अनुभव गोचर हुआ क्या नहीं हुआ? कि अनुभव गोचर भी है। जितना ज्ञान प्रकट हुआ उतना अपना स्वभाव खुला, यह स्वयं ही है, यह स्वयं है। स्वभाव खुला, वो स्वभाव स्वयं है। इतना विशेष आवरण जाने पर भी परम ज्ञान जाता है, यह अशुद्ध जितना अंश, और यह अशुद्ध और जितना अंश निज में रहे उतना शुद्ध। क्या है कि जितना ज्ञान प्रकट हुआ उतना स्वभाव तो खुल गया। इतना विशेष आवरण जाने पर भी फिर भी ज्ञान का कुछ अंश पर में जाता है, उतना ज्ञान अशुद्ध लेना है। पर सन्मुख होता है उतना ज्ञान अशुद्ध, अशुद्ध कहो या ज्ञान का दोष कहो, एक ही बात है। और निज में रहा उतना शुद्ध, वो ज्ञान दशा में होता है। फिर भी अपेक्षा वो है उसमें कि इस विषय का सभानपना है तो बात ठीक है।
तो ज्ञानी कोई हो सकता है? हाँ, अपने स्वरूप से अभिन्न वर्तते हैं, इसीलिए पर से भिन्न वर्तते हैं, तो ज्ञानी का परिणाम है
बराबर, ज्ञानी के परिणाम बराबर। और अज्ञानी को
सबसे उल्टा होता है,
उल्टा होता
है, इसलिए जितना आवरण हटा करते करते ले सकते
हैं। जितना निरावरण हुआ फिर भी ज्ञान ज्ञानी का भी पर में जाता है, उतना ज्ञान का दोष लगता है, ऐसा कहना है।
पूर्ण
दशा नहीं है तो अधूरी दशा में दोष होता है। हाँ, इसलिए दोष चालू है, पुरुषार्थ इतना कम है, कमजोरी के कारण से उपयोग बाहर में जाता है, ये कमजोरी है खुद की। अतः केवल ज्ञान गुप्त है।
अगर ज्ञानी का उपयोग बाहर नहीं जाता तो फिर औरों का कल्याण कैसे होता?
तो क्या ज्ञानियों ने अन्य का कल्याण करने का ठेका लिया है?
हाँ, ये तो उनका करुणा को तो दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, उनका वीर्य का कमी है, पुरुषार्थ का कमी है, हमारे देखने का विषय नहीं है, वरना फिर दोष खड़ा हो जाएगा,
अभक्ति हो जाएगी।
दोष बहुत बड़ा दोष क्या, परिभ्रमण का सबसे मोटा कारण तो
अनंतानुबंधी का मूल कारण है। क्या बात चली, एक ज्ञानी को भी दोष होता है क्योंकि इसका उपयोग भी बाहर जाता है। ये बात हमको देखने नहीं जाए। कैसे बात होती है,
कोई पात्र जी आता है तब ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है।
वो ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है, वो अपने कारण से जाता है। चर्चा चली थी, सुबह चर्चा चली थी, इस विषय में वो बात चल रही कि प्रेम बंध का कारण है कि नहीं है। राग तो बंध का कारण है, लेकिन प्रेम बंध का कारण है कि नहीं है। तो वो चर्चा कर रही थी कि प्रेम बंध का कारण नहीं है, तो वो बात इधर लागू कर दिया। चलो वो जो है कि ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है, मुमुक्षु को उपेक्षा ऐसे लेना को वो तो अच्छा ही है, मेरे लिए तो गुण है, चाहे किसी अपेक्षा से उसको दोष बताया हो या खताया हो, लेकिन मेरे मतलब से, मेरे प्रयोजन से मैं देखता हूँ तो मेरे लिए वो अवगुण नहीं है, मेरे लिए तो गुण इसलिए है कि मेरे मेरा लाभ का कारण होता है, मेरा लाभ का निमित्त होता है, इसलिए मैं इसको अवगुण कैसे लूं। तो मुमुक्षु ज्ञानी के अवगुण को भी गुण के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसको भक्ति है, उसको भक्ति भी है और प्रेम भी है, इसलिए अवगुण को भी गुण के रूप में देखते हैं। ऐसा आया है कि गुरु गुण संभारणा में बेंसरे ने लिखा है,
अवगुण को गुण के रूप में देखते हैं कि खाली गुण ही गुण उसमें दिखते हैं।
हाँ, मतलब गुण ही गुण दिखते हैं, इसलिए अवगुण को भी गुण के रूप में दिखते हैं, क्योंकि उसको तो गुण ही गुण दिखते हैं, सब बात गुण रूप ही दिखती है उसकी, कोई अवगुण उसको दिखता ही नहीं है।
अवगुण अवगुण शब्द को रखे वहाँ पे,
निकाल दो
गुण की मूर्ति, अवगुण
कहाँ से देखते हैं। उसमें एक बात करें, गुरुदेव कभी कभी ऐसे बोलते थे, देखो हमारे से भूल हो गई तो हम इधर आ गए और वो भी स्थानक वासी में आ गए, सतांबर में आए नहीं, तो भूल हो गई, ये भूल का दंड भुगतना पड़ता है। तो मुमुक्षु लोग गुरुदेव को क्या कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, वो तो हमारा भाग्य था ना, इसलिए आप इधर आए, आप आए वो तो हमारा सौभाग्य है, इसलिए आप याद आए हैं, ऐसे ही कहते थे। और गुरु गुण संभारणा में बेंसरे ने ऐसा लिया है कि गुरुदेव स्थानिक वासी में जन्म लिए तो अनेक स्थानिक वासी जीवों का कल्याण हुआ, तो ग्रहित का संप्रदाय था, वो था वो था, वो बात कोई नहीं सोचते, गुण देखा उसमें भी गुण देखा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों देखा कि ये गुण दृष्टि है, ऐसे ऐसे देखते हैं, दोष दृष्टि होती तो ऐसा नहीं देखते, गुण दृष्टि में गुण ही गुण दिखते हैं, दोष दिखते ही नहीं है। तो हर जगह ऐसा होता है, संसार में भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हमारा विवाही लोग आते हैं ना, आजी सा बोलते हैं, लड़की के ससुर हैं, तो फिर बोले बोले क्या बोलेंगे कि चाय पियेंगे आप, पीना तो पड़ेगा, चलेगा नहीं, आप आए हो तो ना तो दे सकते हैं, तो कोई रुचि नहीं है, कोई बात नहीं, रुचि नहीं है तो आप थोड़ा भी लीजिए, अच्छा आधा कप बना लो। अब क्या करेंगे कि देने वाले तो पूरा कप भर के देंगे, बात तो हुई है कितने आधा कप लेने के, और देंगे
पूरा,
तो फिर कहेंगे भाई आधा कप देने की बात है तो आधा दीजिए ना, तो पूरा वाला क्या बोलेगा, वो तो आधा ही है। क्या कहेंगे, भरा है पूरा, लेकिन बोलेंगे क्या, आधा ही है, पी लीजिए। तो ये पूरा पूरा भी अधूरा, पूरा भी अधूरा नहीं, ऐसा देखते हैं, पूरा होने के बावजूद भी अधूरा नहीं है, ऐसे देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, संसार में यहाँ भी ऐसा ही होता है, जहाँ स्नेह होता है, प्रेम होता है, वहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, अलग अलग होता है, न्याय अलग बात है, नीति अलग बात होती है, ये नीति की बात है, न्याय की बात नहीं है, न्याय में तो जितना है उतना ही तोल माप आता है, नीति में ऐसा नहीं होता है, नीति में गुण दृष्टि गुण का काम करती है, दोष दृष्टि दोष का काम करती है। क्या सारांश क्या निकला, कि हमें गुण दृष्टि प्रकट करनी है और दोष दृष्टि मिटानी है, अनादि की जो दोष दृष्टि है वो हमें मिटानी है, ये इसका सारांश है। दोष दिखने पर भी गौण कर दे तो मिट जाए, दोष दिखने में आए तो भी उसको गौण कर दे, और गुण दिखने में आए तो उसको और बढ़ावा दे, ये दोनों बात करनी होनी चाहिए।
खुद के दोष देखो ना, दोष अगर मुख्य करना है तो अपने करो,
अपने दोष को देखो,
दूसरे के दोष दिखेंगे उसको लेट गो करना, दूसरे के दोष को लेट गो करना चाहिए और खुद के दोष को मुख्य
करना चाहिए, अपने दोष को बड़ा देखो, दूसरे के दोष को मत देखो, और अपने गुण को छोटा देखो और दूसरे के गुण को बड़ा देखो, तो दोष दृष्टि मिट जाएगी और गुण दृष्टि प्रकट होगी।
हाँ
होता है, ये पॉलिसी की बात हुई, नीति की बात है,
सही है, सामने वाला गलत है, फिर उससे वजन क्यों।
अब कहते हैं परंतु केवल ज्ञान गुप्त है, परंतु परोक्ष ज्ञान में वो केवल ज्ञान निरावर है ना, तो अभी खुला खुला नहीं है, इसमें गुप्त है, ज्ञानी के परिणमन में वो गुप्त है, परंतु परोक्ष ज्ञान में निरावरण की प्रतीति कर करके आनंद को बढ़ाते हैं, आनंद को बढ़ाएं। आगे क्या बोला कि केवल ज्ञान मात्र वस्तु की प्रतीति कर करके, प्रत्यक्ष कर करके स्वसंवेदन को बढ़ाएं। अभी आनंद की बात लिया कि परोक्ष ज्ञान में भी निरावरण की प्रतीति करके, निरावरण को प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष की प्रतीति कर करके आनंद को आनंद को वृद्धिगत करें, आनंद को बढ़ाएं। स्वसंवेदन बढ़ेगा तो साथ आनंद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तो खड़ा है तो परोक्ष ज्ञान में विचार करता है, तब तो परोक्ष ये प्रोसेस तो ही चलता है। तो परोक्ष में खड़ा है और प्रत्यक्ष की प्रतीति कर करके आनंद और स्वसंवेदन को बढ़ाता है। नहीं, वो प्रत्यक्ष है, पर वो जो भावना करता है वो तो परोक्ष ज्ञान में है ना, विकल्प करता है उसको तो परोक्ष ज्ञान में है ना। जो सर्वथा प्रत्यक्ष होवे तो बात पूरी होगी, कुछ करना धरना नहीं रहा, कृत कृत हो गया। तो प्रत्यक्ष को आविर्भूत करने के लिए प्रत्यक्ष की भावना करेगा, प्रतीति करेगा प्रत्यक्ष के।
प्रत्यक्ष होकर से सुख और आनंद प्रत्यक्षता से सुख और आनंद होगा।
हाँ, प्रत्यक्षता से पुरुषार्थ तेज होता है और पुरुषार्थ तेज होने से सुख आनंद स्वसंवेदन आदि सब सब गुण आगे बढ़ता है परिणाम। ज्ञान शुद्ध भावना थी शुद्ध हुए यही कहा है कि या मति सा गति इति वचनात्, जैसी मति वैसी गति। बाहर भी ऐसा ही होता है, उल्टा में भी, कि जिसको मूंग बहुत भाता है वो तो बार बार मूंग के आइटम की भावना करेगा। हलवा बनाने का तो के मूंग का बनाओ, चिलड़ा बनाने का तो के मूंग का बनाओ, दाल बनाना है तो मूंग का बनाओ, और चिड़वा बनाना है तो भी उसमें मूंग मूंग की दाल डालो, चने की मत डालो, क्योंकि मूंग भाता है। क्या हुआ तो मूंग का जीव हो गया, ऐसे चने के जीव होते हैं, ऐसे हर फ्रूट में होते हैं ना, वो अमृत में होते हैं ना, उसकी उजल होती है। क्यों वहां क्यों गया, बहुत भाता था, खाते खाते बहुत रस लिया था, गया उसमें, आयु बंद हो गया, उसी टाइम आयु बंद हो गया। या मति सा गति, जैसी मति वैसी गति। इति वचनात्, इस वचन अनुसार ऐसा ही होता है। ऐसे स्वरूप की भावना होती है तो स्वरूप में गति होती है। अपना स्वरूप साक्षात किस रीति से होता है यह कहने में आता है। देखो बार बार कैसे बात उठाते हैं, ये तो ग्रंथ का रस लेने की मजा है। बार बार वो उठाएंगे इस बात को कि स्वरूप साक्षात कैसे हो गए, यही कहेंगे अभी। अपना स्वरूप साक्षात किस रीति से हुए यही कहने में आता है कि प्रथम निर्ममत्व भाव से संसार के भाव को गौण करे, अघो करे, अघो करे मतलब गौण करे, निरस करे, फिक्का करे, निर्ममत्व भाव से कि इसमें मेरा अस्तित्व कहीं भी नहीं है। हाँ मोड़ो फिर तो फिक्को क्यों, हिंदू मैंने फिक्को क्या, तो प्रथम निर्ममत्व भाव से संसार के भाव जो होते हैं, संसारी पदार्थों में जो भाव होते हैं, उसको सब प्रथम निरस करना चाहिए। इसी को मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य कहने में आता है। ये मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य है। मुनि की भूमिका का वैराग्य में वो त्याग कर देता है राजपाट कुछ भी हो तो, लेकिन वो मुमुक्षु की भूमिका नहीं है। मुमुक्षु को तो वैराग्य की केरवणी करके फिर वहां तक पहुंचना है। तो यहाँ तो वो निरस करे, फिक्का करे, गौण करे, किस रीति से करे यह कहने में आता है कि जो दृश्यमान है ये सब रूपी जड़ है। जो भी दृश्यमान मैंने दिखाई देता है वो तो सब जड़ है, चाहे आंख से दिखाई दे या कान से सुनाई दे या नाक से सुनने में आए या सब या स्पर्श से स्पर्श करने में आए, सब जड़ है। ये तो सब रूपी जड़ है, रूपी जड़ नहीं है, रूपी जड़ है, रूपी जड़ काल कालानु धर्म अधर्म और आकाश, वो चार रूपी जड़ है और पुद्गल रूपी जड़ है। तो जो भी देखने में आता है वो पुद्गल है या रूपी जड़ है।
वो भी हाँ,
ऐसे बहुत सी अपेक्षा है उसमें कि जो मेरा नहीं तो मैं चैतन्य, मेरे सिवा सब जड़, तो उसमें एक श्री गुरु का आत्मा आएगा कि नहीं,
वो तो मेरे और उसमें अंतर
सिर्फ भगवान का आत्मा आएगा कि नहीं आएगा,
वही सब कुछ है, सब एक ही है।
लेकिन दृष्टि के विषय में तो सब जड़ हो जाएगा, दृष्टि के विषय में सब जड़ जड़ हो जाएगा, और इससे भी एक आगे की अपेक्षा है। ज्ञान है, चैतन्य गुण है, वो चैतन्य है, और आत्मा के आनंद आदि अस्तित्व आदि जितने भी गुण है वो जड़ है। ऐसे ऐसे वैसे अपेक्षा आते हैं शास्त्र है?
आगे की अपेक्षा से क्या मतलब
है?
आगे
अपेक्षा से मतलब नहीं है, लेकिन कभी कोई शास्त्र की बात सामने आ गई, कोई शास्त्र पढ़ लिया सुन लिया तो बात का
नहीं, तो बोलते हैं आप रोजन गुरु शिष्य को फोन कर देना
चाहिए, फोन कर देना चाहिए, वो बात जरूर है, लेकिन समझे तो सही अपेक्षा से समझे, या अप्रयोजन भूत या अप्रयोजन भूत जान करके छोड़ दे उसको,
समझ के ज्ञान का टोपला को क्यों मोड़े, समझ करके ज्ञान के टोपले को क्यों मोड़े, फिर मान आने का अवकाश है, फिर मान आने का अवकाश
है, मान बोझा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
जब तक यथाता प्रवेश थे तब तक तो जोखिम ज्यादा है।
माथा तो प्रयोजन भूत विषय में ही मारना, लेकिन जीव को आदत हो गई है तो अप्रयोजन में भी माथा मारता है। वो बैल होते हैं, भैंसा होती है, बड़े बड़े सिंह होते हैं, तो कूड़े के ढेर के पास से गुजरता है, चलता है तो माथा मार कर सिताता है और फालतू की गंदगी को उड़ाता है चारों ओर। तो जैसे मनुष्य देखेगा तो देखो क्या किया उसने,
जैसे सांड जो तालाब कपड़ा देख करके उसके पीछे घूमता है, वैसे मनुष्य जो है पर विषय में लगेगा।
ऐसे लगता है कि इसने देखो क्या कर गड़बड़ कर दिया, ऐसे अप्रयोजन में ऐसा ही होता कि सामने आया कोई अप्रयोजन भूत विषय, वो अप्रयोजन भूत विषय को कूड़ा का ढेर समझो, माथा नहीं डालना वरना बैल और भैंसा उदय हो गया। ये जितनी भी दूसरे की पंचायत है वो क्या है, वही बात है, तो कूड़ा का ढेर में सिंह लगाना हो गया फालतू का। दूसरे की पंचायत में तो ऐसा है, लेकिन हमारे घर में तो हम माथा मारे क्या नहीं मारे, लड़के बराबर लड़के के काम करते हैं कि नहीं, दूसरे सब अपने अपने काम बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं, और घर व्यवस्थित रूप से चलता है कि नहीं चलता है, वो तो करना कि नहीं करना, क्यों
जब जब जो जो होने नहीं सकता, जब मैं हूँ ही नहीं, जब मैं अपने से कोई नहीं मानूंगा तो कितने मानूंगा।
मेरा अपना मान करके माथा मारता है, पड़ोसी के घर में माथा नहीं मारता है,
मेरा अपना को उठाते ना तो कहीं पे मेरा लंबाएगा नहीं,
तो घर को व्यवस्थित नहीं रखना तो कोई क्या गोडाउन बना देना मेरा पना हटा देना, फिर चाहे व्यवस्थित रहे चाहे
गोडाउन, व्यवस्थित रहेगा तो भी उसको टेंशन नहीं आएगा, और व्यवस्थित रहेगा तो भी उसको कोई खुशी नहीं,
और व्यवस्थित रहेगा तो भी टेंशन नहीं आएगा, मेरापना में प्रेम नहीं होता है, राग होता है। प्रेम कहाँ होता है, राग होता है, उसको प्रेम कहना वो तो प्रेम को गाली देना बराबर है तो प्रेम का अपमान हो जाएगा, तो राग है,
प्रेम ना लीजिए तो राग में पहुंचे,
ऐसा क्यों आया है, ऐसा क्यों आ गया,
संसार का प्रेम ट्रांसफर हो जाता है।
समझ में सुन रहे
प्रेम नहीं किया
प्रयोजन भूत विषय और क्या क्या नहीं अप्रयोजन भूत विषय में क्या
है, मेरे मेरे आत्म कल्याण के सिवाय सभी अप्रयोजन भूत है, गांव के कोई घर मेरे नहीं है, ये कि मेरा है, इसमें आ गया सब, 10,000 घर को ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, क्या करूं मैं, ये मेरा है, बाकी के सब मेरे नहीं, मेरा आत्म कल्याण वही मेरा प्रयोजन, मेरा आत्मा वही मेरा परम प्रयोजन, बाकी सब हमारी को लड़की को जो भी है ये सच है, वही सत्य है।
कोई अगर बाप अपनी बेटी का बेटा को या फिर अपने बाप का तो भी 100 का 100 पड़ता है तो उसमें कोई परसेंटेज का फर्क नहीं है।
उनकी बात धीरे 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 कर लू, पहले इतना कर लू, पहला उतना कर लू, पहला उतना कर लू। अभी तक व्यवस्था में लगे हुए थे, अब थोड़ा निवृत्त होने की तैयारी में आए। बस आस्ते आस्ते आगे बढ़ना ने
जी को ये भरोसा नहीं आता है। अगर ये वर्तमान में लग जाना कि मैं अगला सेकंड देखूंगा कि नहीं देखूंगा तो वर्तमान में जान देती हूँ।
प्रथम संसार के भाव को निरस करें किस रीति से, दृश्यमान सब जड़ है। कैसे कि जो सभी जड़ उसमें अपने को मानता सुख कैसे, वो तो दुख होता है, सुख होगा कैसे उसमें, अपनापन करने से सुख कैसे होगा, तो दुखी होगा। इस प्रकार से शरीर जड़ उसमें ममत्व नहीं करना, अपने शरीर में भी ममत्व नहीं करना, तो फिर दूसरे पदार्थ में तो ममत्व करने का, परिवार आदि में तो ममत्व करने की बात रहती नहीं। कैसे कि शरीर आदि जड़ उसमें अपने को मानते हैं तो सुख कहाँ होगा, कैसे होगा। कोनो राग द्वेष मोह भाव असाता भाव तृष्णा भाव अविश्राम भाव अस्थिर भाव दुख भाव आकुल भाव खेद भाव अज्ञान भाव, तो सब अज्ञान भाव है इसलिए हे ही है, ये सब प्रकार के भाव है वो हे ही है। और आत्मभाव ज्ञान मात्र भाव, देखो क्या लेते हैं ज्ञान मात्र भाव, शांत भाव विश्राम भाव स्थिरता भाव अनाकुल भाव आनंद भाव तृप्ति भाव निज भाव है इसलिए उपादेय है। देखो ये उपादेय के दोनों खातों में किस किस भाव की रकम है खता लेना, ये भाव सब हे है, ऐसे भाव सब उपादेय है। आत्म परिणति में आत्मा है, आत्मा कहाँ है, आत्म परिणति में आत्मा है, जहां आत्म परिणति वहां आत्मा। और जहां मैंपना करता है वहां आत्मा है, दूसरे पदार्थ में मैंपना कर लिया तो वहां आत्मा चला गया, ऐसा तो जाता नहीं है इसलिए उसको मिथ्या भाव कहने में आता है। मैं हूं क्या कहते हैं, मैं हूं ऐसी परिणति द्वारा आत्मा प्रत्यय, ऐसी परिणति के कारण से आत्मा प्रत्यय। मैं हूं अपने में मैं अपना करने से मैं हूं ऐसी परिणति द्वारा आत्मा प्रत्यय, आत्मा में परिणति आई कहाँ आई, इधर उधर घूमती थी वो आत्मा में आई। मैं हूँ पना की मान्यता मान्यता की पद का साधन है, तो स्वरूप में मैं पना किया वही स्वपद सिद्ध पद बनने का साधन है ये मान्यता। हूँ परिणाम मैं कहता हूँ, हूँ ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ। तो मैं ऐसे परिणामों ने स्वपद की आस्तिकता करी और स्वपद परिणाम योग्य स्थान बिना होए, जहाँ स्व है वहाँ स्वपद है, वहाँ स्वपना करने से मान्यता यथा योग्य स्थान में हुई। और जहाँ स्वपद है और स्वपद की आस्तिक्यता मैंने श्रद्धा हुई, वहाँ काय चेष्टा वहाँ नहीं है, वहाँ कोई शरीर की क्रिया नहीं है, वहाँ वचन उच्चारणा भी वहाँ नहीं है। क्या वचन उच्चारणा है वहाँ आत्मा नहीं, वहाँ काय चेष्टा है वहाँ आत्मा नहीं। इसलिए वचन उच्चारणा वहाँ नहीं है, मन चिंतन भी वहाँ नहीं है, मन का चिंतन मन में होता है आत्मा में देखो। और आत्मपद में अपनी मग्नता स्वरूप विश्राम आनंद रूप पद में स्थिरता चिदानंद चित परिणति का विवेक करना, इस प्रकार से चिदानंद और चैतन्य परिणति का विवेक करना। सामने पंद्रह में पाना पर जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ छोड़ करके चिदानंद की भावना से मैंने चिदानंद को भाने से चित्त परिणति शुद्ध होती है। भावना को करना, चित्त परिणति शुद्ध होने से चिदानंद भी शुद्ध होता है। तो आत्मा तो शुद्ध है लेकिन अनुभव में आता है। अनात्म परिणाम मिटा करके आत्म परिणाम करना यही कृतकृत्यपना है। अनात्म परिणाम मिटा करके आत्मा के आश्रय से आत्म परिणाम करना यही कृतकृत्यपना है। योगीश्वर भी उतना करता है, बड़े बड़े योगी भी यही काम करते हैं। और प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये सब इसे करने का निमित्त है, इसके लिए कहा है। दूसरे दूसरे योग के प्रयोग करने के लिए नहीं कहे, तो आत्म परिणति के लिए बताए हैं। स्वस्वरूप परिणाम में अनंत सुख हुआ, निज पद की आस्तिकता हुई, अनुपम पद में लीनता हुई, एक स्वरस हुआ, शुद्धोपयोग हुआ और सहज पद का अनुभव हुआ। ऐसे आत्म परिणाम का निज परिणाम का अपार महिमा है। ऐसे आत्मा रूप परिणमन का महिमा कितना है? अपार महिमा है। ये परमेश्वर स्वपरिणाम को किए बिना पर परिणाम से गोथा खाता है। देखो क्या क्या बात किया है परमेश्वर बोला, संसारी आत्मा को भी ये परमेश्वर है हो, पर परिणाम को स्वपरिणाम को किए बिना पर परिणाम से चारों ओर गोथा खाता है। अपना परिणाम स्वरूपानंदी होने पर परमेश्वर कहलाया, ऐसा प्रभाव आत्मज्ञान के परिणाम का है, ऐसा प्रभाव आत्मज्ञान के परिणाम का है। परिणमन से अविनाशी पद का अपूर्व लाभ हुआ, ऐसे परिणमन से अविनाशी पद का अपूर्व लाभ हुआ। तो कहते कि ये परिणाम स्वरूप में किस प्रकार से लगे वो कहने में आता है, फिर उलट करके वो बात लेते हैं, ऐसे स्वरूप में परिणाम कैसे लगे वही कहते हैं। पर से परांगमुख होकर के वारंवार स्वपद को अवलोकन करने का भाव करें, देखो क्या आया कि पर से परांगमुख होकर के पलट करके, परांगमुख होना मैंने पलट करके, पर से पलट करके वारंवार अपने निज सत्ता को स्वपद में ने निज सत्ता को निज मौजूदगी को अपनी मौजूदगी को अपनी सत्ता को अवलोकन करने का भाव करें। विचार नहीं, स्वरूप का विचार नहीं करना है, अवलोकन करने के परिणाम करें। दर्शन ज्ञान चरित्र चेतना का प्रकाश है, उसको यथा योग्य यानी यथास्थान रूप कर करके स्वरूप परिणति को बढ़ाए, योग्य स्थान बने, अपने में अपना स्थान करें, अपने को अपने में स्थापना करें, किससे? श्रद्धा ज्ञान और चारित्र से। आत्मज्योति, आत्मज्योति आत्मा से भिन्न अखंड प्रकाश, अनात्मा से, आत्मा से नहीं लेना वहां, आत्मज्योति मैंने अनात्मा से भिन्न अखंड प्रकाश, आनंद चेतना स्वरूप, आनंद चेतना स्वरूप चिद विलास का अनुभव प्रकाश परिणाम द्वारा प्रकाश है, प्रकाश परिणाम द्वारा मैंने वेदन द्वारा प्रकट करें। आत्मज्योति तो अनात्मा से भिन्न दे दिया, खंड प्रकाश ऐसा कि आनंद चैतन्य रूप फिर विलास, चैतन्य का विलास और अनुभव का प्रकाश, अनुभव प्रकाश ग्रंथ है ना, इसलिए लिया अनुभव प्रकाश, ऐसे परिणाम द्वारा प्रकाश है, प्रकाश है मैंने वेदन करे। जहां से परिणाम उठे हैं वहां परिणाम को लगावे, देखो परिणाम कहां से उठता है, बाहर से उठता है, जहां से उठता है वहां लगाओ, कनेक्शन टूट जाएगा, दूसरे से कनेक्शन टूट जाएगा। हाँ वो तो परिणमन का ही सब बात चलता है, कि तुम ऐसा परिणमन करो, ऐसा विचार करो वो बात नहीं चलती है, परिणमन करो। तो कैसे कह कि परिणाम जहाँ से उठता है वहाँ परिणाम लगाओ, तुम्हारा परिणाम और जगह से उठता नहीं वहाँ परिणाम क्यों लगाते हो, वो बात है। मतलब ज्ञान को अन्य ज्ञेय में रोको मत, जहां से वो ज्ञान उत्पन्न होता है वहीं ज्ञान को लगाओ ना, ऐसा कहते हैं। देखो ना कहां से उठता है, वही तो कहते हैं कहां से उठता है, बाहर से उठता है या अंदर से उठता है, अंतर में लगाओ परिणाम को। परंतु अज्ञान ज्ञान को रोके ऐसा परिणाम न करे, ज्ञान को बाहर में वहां ज्ञान रुक जाए अटक जाए ऐसे परिणाम नहीं करे। परिणाम तरंग, क्या शैली है, कवि थे दीपचंद जी है वो कवि थे। कहते हैं कि परिणाम तरंग चेतना अंतरंग अभंग अंग में लीन हुआ करे। परिणाम की जो तरंग है तो अंतरंग चेतना में अपना अभंग स्वरूप है, तो एक अंग है, अंश है बड़ा, उसमें लीन हुआ करे। परिणाम चेतना परिणाम तरंग चेतना अंतरंग अभंग अंग में लीन हुआ करे। तो अमरपुरी निवास होवे, कहाँ निवास होवे, अमरपुरी में निवास होवे। स्वरूप खुद ही अमरपुरी है, क्योंकि अनादि अनंत है। अमरपुरी निवास हो जाएगा। और अमरपुरी निवास कैसे होगा, निज बोध के विकास से है। अमरपुरी का निवास आत्मज्ञान के विकास से होगा। ये तो बहुत महिमा किया है, अनुभव का महिमा। बाकी का जो वचना व्रत है उसमें अनुभव का महिमा किया है। निश्चल निश्चय निश्चल अमल अतुल खंडित अमित तेज अनंत गुण रत्नमंडित ब्रह्मांड को पहचान करके ब्रह्म पद को पूर्ण परम चैतन्य ज्योति स्वरूप अरूप अनूप त्रैलोक्य भूप परमात्म रूप पद को पा करके पावन हो करके रहे, यही अनुभव की महिमा है। तो बहुत रस आया है लिखने वाले का, कवि थे बहुत जानते थे, ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं वो समझे। यहाँ तक रखा
Bravo!